अञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्तादरः न परः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं आ ब्रह्म भुवनालोक पुनः आवर्ती न अर्जुन माम उपेति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वो कहते हैं कि ये भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सारे जो लोक हैं वो जन्म और मृत्यु के लोक हैं। कोई अगर ब्रह्मा जी के पद की प्राप्ति भी करता है तो उसकी भी मृत्यु होगी, उसको भी पुनः जन्म लेना होगा। और अगर कोई पाताल लोक में भी रहता है, कोई नरक में भी जाता है, तो फिर भी उसे जन्म लेना होगा, उसे मरना होगा। तो चाहे हम ब्रह्मा हो, चाहे हम मानव हो, चाहे हम छोटी सी चींटी हो, सबको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इस जीवन का अंत सभी के लिए आएगा। चाहे वो जीवन बहुत लंबा हो जैसे देवी देवताओं का है या ब्रह्मा जी का है, चाहे वो मनुष्य जीवन की अवधि के बराबर हो, चाहे वो चींटी की जीवन की अवधि के बराबर हो, सभी का जीवन ये बहुत जीवन ये भौतिक संसार में सीमित है। इस संसार में हम देखते हैं कि लोग लंबी उम्र जीना चाहते हैं। जब कोई बुजुर्ग किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या बोलते हैं? चिरंजीव भव, जीते रहो बेटे, जीते रहो बेटी, जीते रहो। लेकिन शास्त्र में हमें बताया जाता है कि जीने का एक ही कारण है और वो है भगवान की सेवा करना। जो व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर रहा है वो जीवित होते हुए भी मृत अवस्था में है। एक जीता जागता एक शव है, मृत शरीर है वो। इसलिए बताया जाता है श्रीमद् भागवत में, तरवह किम न जीवंती, भस्त्रा किम न श्वसंत्युतः, न खादंती न मेहंती, किम ग्रामे पशवो परे। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हे महाराज परीक्षित, क्या जो पेड़ हैं क्या ये सांस नहीं लेते हैं? ये क्या जीते नहीं हैं? इतने लंबे साल से पेड़ खड़े होते हैं, हम देखते हैं ये पेड़ कितने सालों से है, लेकिन ये जीते रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश है धूप है खड़े रहते हैं वैसे। भस्त्रा किम न श्वसंत्युता, भस्त्रा मतलब जो लोहार का जो भस्त्रा होता है जिससे वो काम करता है, वो भी ऊपर नीचे होता है, हवा बाहर निकालता है जिससे कि वो आग के ऊपर हवा डालता है फिर उससे लोहार काम करता है। तो उसी तरह से हमारी फेफड़े हैं अंदर, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े होते रहते हैं लंग्स, हम सांस लेते रहते हैं। जिस प्रकार से लोहार का भस्त्रा जो है वो कम छोटा कम बड़ा होते रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो वो केवल भगवान के वो लोहार के भस्त्रा की तरह है, केवल सांस ले रहा है, फेफड़े ऊपर नीचे हो रही है बस, और कोई नहीं। हवा अंदर जा रही है हवा बाहर आ रही है, हवा अंदर जा रही है हवा बाहर आ रही है। तो हवा बाहर अंदर ही जाना है तो लोहार का भस्त्रा भी वही काम करता है। तो हम में और उनमें फर्क क्या होता है? किम खादंत न खादंती न मेहंती, ग्रामे किम ग्रामे पशवो परे। क्या गांव में इतने सारे पशु हैं वो क्या खाते नहीं हैं? वो क्या बच्चों को पैदा नहीं करते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी बताना चाहते हैं कि केवल जीना, ये लंबी उम्र जीना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर केवल हमें सांस लेना है, खाना है पीना है, संतान की उत्पत्ति करनी है, भोग करना है, तो वो पेड़ भी करते हैं, पशु भी करते हैं, लोहार का भस्त्रा भी करता है, तो फर्क क्या पड़ता है? इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, आयुर हरति वही पुंसाम उद्यन अस्तन चयन असो तस्यर्त यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का गुणगान नहीं करता है, भगवान की सेवा नहीं करता है, तो जैसे हर एक क्षण बीतता है उसकी आयु बढ़ती जाती है, जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक समय बीतता रहता है, उद्यन अस्तम चयन असौ, तो क्या होता है? वो मृत्यु के एक दिन और करीब पहुंच जाता है। लेकिन तस्यार्थ यत् क्षणोनीत उत्तम श्लोक वार्तया, लेकिन जो व्यक्ति उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक मतलब श्री हरि श्री कृष्ण, जिनके वर्णन सुंदर सुंदर श्लोक और कविताओं से किए जाते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान का और एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक वार्तया, जो व्यक्ति उत्तम श्लोक या श्री हरि के बारे में सदैव चिंतन मनन श्रवण कीर्तन करते रहता है, उसके लिए ये समय की सीमा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु के बाद में भगवान के धाम में चला जाएगा, शाश्वत जीवन जिएगा। लेकिन जो इस तरह से भगवान की कथा नहीं करते, भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखते, आयुर हरति वैपुंसम उद्यन अश्चम्त यनसो, तो ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त है ये ऐसे व्यक्ति के आयु का हरण कर लेती है। आयुर हरति वैपुंसम, तो केवल उस जीवन में वो एक चीज में सफलता प्राप्त करता है और वो क्या है कि मृत्यु के एक दिन और करीब पहुंच जाता है। बस उसका यही एक काम होता है। जो भगवान के भक्त नहीं होते वो जीवन में केवल एक काम करते हैं, मृत्यु के करीब जाते रहते हैं बस। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो शाश्वत जीवन, अमर जीवन की ओर बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण कथा करते रहते हैं। तो ये महत्व की बात नहीं है कि हमारी उम्र कितनी ज्यादा है, कितनी उम्र कम है, हम कितने साल यहां जीने वाले हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं जीता रहूं हमेशा के लिए, लंबे उम्र तक जीऊं मैं। लेकिन आजकल के कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो जितनी ज्यादा हमारी उम्र है उतने ज्यादा दुर्भाग्यशाली हम बन जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बुढ़ापा तो बड़ा कठिन होता है। वैसे भी कलयुग बुढ़ापा कठिन होता है लेकिन कलयुग में और भी ज्यादा बुरा होता है। तो हमें यह नहीं देखना है कि हम कितने साल जीने वाले हैं, हमें यह देखना है कि जो भी साल हम जी रहे हैं, जो कि हमारे कपाल पे लिखा है, जो कि हमारे प्रारब्ध से हमारे किस्मत में लिखा हुआ है, उतने ही क्षण हम जीने वाले हैं। लेकिन उसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी है, हमें चिंता करना है कि हम कैसे जी रहे हैं, कितना जिएंगे ये महत्व की बात नहीं है, और वो हमारे हाथ में भी नहीं है। पिछले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार हमारे कपाल पर लिखा हुआ है कितने सांस हमें लेने हैं। हर एक जीव, हर एक प्राणी के बारे में ये एक बात निश्चित है कि इस जीवन में ये प्राणी कितने सांस लेगा। लोग जब इंद्र तृप्ति के कार में लगे रहते हैं तो सांस उनके बीतते जाते हैं जल्दी जल्दी, इसलिए आयु उनकी कम होती जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो हैं, क्योंकि वो कृष्ण कीर्तन करते हैं तो उनकी आयु बढ़ती जाती है, अमर जीवन की ओर वो बढ़ते जाते हैं। योगी जो ध्यान योग में हिमालय में बैठकर अपने सांस को रोकते हैं, प्राणायाम करते हैं, पूरा क्रेच या कुंभक पर अपने सांस को रोक के रखते हैं, वो बहुत लंबे उम्र तक जीते हैं। कई ऐसे ध्यान योगी हैं जो 400, 600, 800 साल भी जीते हैं और अद्भुत शक्तियों की भी उनको प्राप्त हो जाती है। ऐसे कैसे संभव है, क्योंकि वो अपने सांस को रोक देते हैं। सांस को रोकने से आदमी की आयु बढ़ जाती है, क्योंकि ये निश्चित है कि कितने सांस आपको इस जीवन में मिलने वाले हैं। आपने सांस रोक के रख दिया तो आपकी आयु बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं कि आज के क्लास के बाद जाकर आप सब नाक बंद करके घर में बैठे आप हमारी आयु बढ़ जाएगी, ऐसे नहीं, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो योगी ऐसे करते हैं बहुत जीवन भर के प्रयास के बाद में ऐसी अवस्था की प्राप्ति करते हैं। लेकिन ऐसे अवस्था की प्राप्ति हमें हो भी जाए तो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई ध्यान योगी भी है लेकिन उसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो उसके लंबे उम्र की क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं है। ऊपर के लोकों में देवी देवता जो हैं उनकी जीवन की अवधि कितनी है आपको पता है, एक मन्वंतर। एक मन्वंतर अर्थात 70 चतुर्युग। एक चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, ये चार युग मिलाकर एक चतुर्युग होता है। और 70 चतुर्युग होकर एक मन्वंतर बनता है, और एक मन्वंतर मतलब 30 करोड़ साल। तो देवी देवताओं की उम्र होती है 30 करोड़ साल हमारे पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु होती है। और ऐसे 14 मन्वंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिवस में, और ब्रह्मा जी के एक साल में 360 दिन होते हैं, और ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि कितनी बड़ी होगी, और ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में सारा ब्रह्मांड नष्ट होता है और उस समय ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाते हैं। तो चाहे हम देवी देवता भी हों, ब्रह्मा जी भी हों, आखिर मृत्यु होने वाली है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि अगर मुझे अभक्त ब्रह्मा जी का पद मिले तो मुझे वो नहीं चाहिए, इससे भला किसी भक्त के घर में एक चींटी या कीड़े का मैं जन्म ले लूं तो वो बेहतर है। क्योंकि भले मुझे चींटी या कीड़े का शरीर मिले जो नीच योनि है, जिसकी जीवन की अवधि बहुत कम है, लेकिन कम से कम मैं भगवान का नाम तो सुनता रहूंगा, भगवान के भक्तों के संग में तो रहूंगा, और थोड़ा बहुत प्रसाद भी मैं ग्रहण करूंगा। जो भक्त लोग छोड़ देते हैं, इधर उधर गिरा देते हैं, वो खा सकते हैं। लेकिन अभक्त ब्रह्मा बनने से ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होगा। और ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं, ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में, ब्रह्मा जी के आयु के अंत में महाविष्णु में चले जाते हैं, और महाविष्णु अंदर सांस लेते हैं तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड उनमें समेट लेते हैं, और बाहर सांस लेते हैं तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, फिर महाविष्णु अंदर सांस लेते हैं तो सारे चले आते हैं। हम ऐसे सांस बाहर अंदर लेते हैं, केवल मच्छर अंदर बाहर जाते हैं, और कुछ ब्रह्मांड आते जाते नहीं है, तो हम महाविष्णु की नकल नहीं कर सकते। और हमारे सांस में कितना समय चला जाता है, कुछ भी नहीं। जब से प्रवचन शुरू हुआ है कितने सांस लिए हैं आपने, आप गिन नहीं सकते। हजारों सांस ले चुके होंगे अभी तक आपने, आपको पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं। कितने सारे सांस लिए हैं, बिना जाने पहचाने आप सांस लेते जा रहे हैं। उसी तरह से महाविष्णु भी सांस ले रहे हैं, स्वभाव से उनका स्वभाव है, सांस लेते रहते हैं। और उनके सांस लेने जीने अंदर लेने और बाहर निकालने में कितने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड बाहर आते हैं, अंदर नष्ट हो जाते हैं, बाहर आते हैं फिर से नष्ट हो जाते हैं, बाहर आते हैं फिर से नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए, महाविष्णु के जीवन की तुलना से हमारा जीवन क्या है। एक सांस में सारे ब्रह्मांड की आयु हो जाती है, और ब्रह्मांड की आयु जो है हमारे जीवन के हिसाब से कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा है। हमारे जीवन ब्रह्मांड की आयु के हिसाब से कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम ये 30 40 50 70 80 साल जीते हैं तो बहुत महत्व का है। कितना महत्वपूर्ण है ये 80 साल, क्योंकि मैं इसमें जी रहा हूं, मेरा व्यवसाय मुझे बढ़ाना है, मेरे परिवार को संभालना है, मुझे मंत्री बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये करना है, दूसरे को दबा के रखना है। तो ये सारी योजनाएं हम बनाते रहते हैं और भूल जाते हैं कि ये आयु जो है हमारी यूं चली जाएगी, एक सांस में भी नहीं। देवी देवता जैसे सांस लेते हैं, उस समय में हमारे कितने सारे पीढ़ियां बीत जाती हैं। बहुत साल पहले एक राजा थे, सत्ययुग की बात है, जिनका नाम था ककुद्मी। वो रेवत राजा के पुत्र थे, तो ककुद्मी राजा की पुत्री थी, उनकी कन्या थी, जिनका नाम था, कोई बता सकता है, रेवती। पुत्री का नाम था रेवती। तो ककुद्मी राजा चाहते थे कि मेरे कन्या पुत्री का भी विवाह कराना चाहिए। सब जगह ढूंढ रहे थे कोई अच्छा वर मिल जाए, तो उन्होंने सोचा कि मुझे ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद ले लेना चाहिए, और उनको पूछना भी चाहिए कि कोई एक योग्य वर मेरे पुत्री के लिए है या नहीं है। तो फिर ककुद्मी राजा ब्रह्मलोक चले गए। सत्ययुग में पृथ्वी लोक के राजा लोग निवासी भी ऊपर के लोकों में जा सकते थे, और ऊपर के लोक के जो निवासी हैं वो भी पृथ्वी लोक पर आते थे, आया जाया या आना जाना हुआ करता था, लेकिन कलयुग में ये आजकल नहीं होता। तो खैर, ककुद्मी राजा वहां पर गए, और ब्रह्मा जी उस समय कोई मीटिंग में थे, सभा में बैठे थे। दो तीन मिनट देर हो गई ब्रह्मा को आने के लिए, वो थोड़े बातचीत में टेलीफोन में कहीं बात कर रहे होंगे। तो ब्रह्मा जी की बात खत्म हो गई तो ककुद्मी राजा अंदर आए, अपने प्रार्थना की, नम्र प्रणाम किया उनको, और ब्रह्मा जी ने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो राजा ककुद्मि ने बताया कि मेरे पुत्री के विवाह में कराना चाहता हूँ, कोई योग्य वर बताइए। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे अभी कौन सा वर ढूंढेंगे आप, क्योंकि जब तक ये दो क्षण बीत गए, दो मिनट में यहाँ ब्रह्मलोक में बीत गए, वहां पे तो तुम्हारे पृथ्वीलोक में करोड़ों साल बीत गए। तो जब वापस ककुद्मि राजा चले गए तो क्या देखते हैं, सत्ययुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग भी बीतने को आया है और सारे जो लोग हैं वो बिल्कुल अलग लग रहे हैं। देखिए सत्ययुग में लोग बहुत बड़े हुआ करते थे, उनका हाइट जो है लंबाई बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, सौंदर्य सब कुछ सारे अच्छे गुण उनके अंदर थे, उनकी शक्ति बल बुद्धि सब अच्छी थी। जैसे जैसे त्रेता युग आया तो थोड़ा कम हुआ, द्वापर युग और थोड़ा कम, कलयुग और थोड़ा कम, और कलयुग बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक 4 फुट का आदमी कलयुग के अंत में बहुत लंबा आदमी माना जाएगा, लोग उसे चिढ़ाएंगे, ए लंबू। आजकल चिढ़ाते, कोई लंबा आदमी जाता है तो हमने सुना है रस्ते में कोई उसको लंबू करके चिढ़ाते हैं लोग, तो 4 फुट का आदमी जो है उसको लंबू करके लोग चिढ़ाएंगे, मतलब जन साधारण है वो तो 3 फुट की होगी और 4 फुट का आदमी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार से सत्ययुग के जो लोग थे बहुत लंबे थे, त्रेता युग में और भी कम और द्वापर युग में और भी कम। तो जब ककुद्मि राजा और रेवती फिर से आए पृथ्वी लोक पर, द्वापर युग के अंत का समय था, तो ककुद्मि राजा ने सोचा कि अभी योग्य वर मेरे पुत्री के लिए केवल बलराम है, बलराम जी। तो द्वारका में गए, बलराम जी बड़े हट्टे कट्टे थे, ऐसा नहीं कि कोई साधारण व्यक्ति थे, वो द्वापर युग के हिसाब से उनकी भी लंबाई अच्छी थी, चौड़ाई अच्छी थी, लेकिन रेवती के हिसाब से वो बहुत बटू जैसे थे, रेवती इतनी ऊंची और बलराम इतने से। तो फिर जब ककुद्मि राजा रेवती को लेकर गए बलराम के पास, बलराम ने देखा, अरे मैं इससे विवाह करूंगा जो मेरी पत्नी इतनी ऊंची होंगी हमसे, ये कैसे हो सकता है। तो फिर बलराम ने क्या किया, अपना हल लिया और हल से कंधे पे हाथ लगाया रेवती के और उसे नीचे खींच दिया और फिर रेवती की लंबाई कम हो गई, बलराम से कम हो गए, फिर अच्छी तरह से विवाह हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ककुद्मि राजा केवल 1-2 मिनट के लिए ब्रह्मलोक गए थे, यहां कितने सारे करोड़ों साल बीत गए। तो हम देख सकते हैं कि ये समय ये क्या चीज है, यहां हमारा सारा जीवन बीतता है और वहां ब्रह्मा जी सांस भी नहीं लेते हैं, ब्रह्मा जी का आधा सांस भी लेना खत्म नहीं होता कि हमारी मृत्यु भी हो जाती, जन्म हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, हमारे बच्चे बच्चे वो भी मर जाते हैं केवल ब्रह्मा जी के एक सांस में, देखिए। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि ये 80 साल 70 साल 60 साल हम कितने महान हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं, हम कितने सारे अच्छे अच्छे चीजें करते हैं, हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, हमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, लोगों को मेरे सामने नमस्कार करना चाहिए, हम इतने सारे योजनाएं बनाते हैं और ये भूल जाते हैं कि योजना बनाते बनाते जीवन से मृत्यु तो योजना ही बनाते रहते हैं, मृत्यु के समय सारी योजनाएं खत्म हो जाती हैं। जैसे कि एक समुद्र के किनारे बैठा हुआ एक बालक रेती से वो महल बनाते रहता है, लेकिन थोड़े ही समय में क्या होता है, जल ऊपर आता है, समुद्र का पानी आके सारे उसके महल को नष्ट कर देता है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी ये संसार में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, हमको भी ये करना, हम वो करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, उतने वो करेंगे, लेकिन समय यूं बीत जाता है और पहचानने के पहले ही, जानने के पहले मृत्यु आ जाती है। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि कितने साल हम जीते हैं, हम भगवान की कितनी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, ये महत्व की बात है। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि कलकत्ता में एक पीपल वृक्ष है जो हजारों साल पुराना है, अमेरिका में कैलिफोर्निया प्रांत में थोड़े वृक्ष हैं जिनको रेडवुड वृक्ष कहते हैं, 5000 वर्ष पुराने हैं वो, आज भी हैं वो वहां पर 5000 वर्ष पुराने वृक्ष, जैसे के वैसे ही हैं। तो हमारी उम्र भी अगर 5000 साल हो, कभी कभी हम भी चाहते हैं ना हमारी उम्र ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या लाभ है उसका, हम भी उस वृक्ष के बराबर ही हैं। वृक्ष कोई पुरस्कार नहीं देता, 5000 साल वर्ष जिए तुम जिए हो, कोई पुरस्कार नहीं देता। तो उसी प्रकार से केवल लंबी उम्र जीना बड़ी बात नहीं, बड़े बड़े संत हुए हैं, इनमें से कितने ही संत जो है कम उम्र में उनका देहांत हो गया, और इतने कितने लोग हैं संसार में जो 100 साल 125 साल भी जिए हों लेकिन उनको भूल गए हैं। लेकिन ये जो संत हैं जिनको जिनकी उम्र बहुत कम थी जब उनका देहांत हुआ, उनको हम याद करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु पृथ्वी लोक को छोड़ के चले गए अपनी लीला समाप्त करके, तो उनकी उम्र 50 भी नहीं थी। जीसस क्राइस्ट यीशु क्राइस्ट उनकी उम्र केवल 30 थी, 30-35 थी। शंकराचार्य भी 30-35 साल की उम्र में वो भी गुजर गए। तो इस प्रकार से कितने ऐसे संत हुए हैं जो कि कम उम्र में गुजर गए, लेकिन फिर भी हम याद रखते हैं उनको। तो कहने का मतलब है कि जीवन मतलब कृष्ण की सेवा, और जहां कृष्ण की सेवा न हो वो मरण है, वो मृत्यु है। मार्कंडेय ऋषि का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, बहुत लंबी उम्र जिए थे वो। एक बार यही कहा जाता है कि उन्होंने सारा ब्रह्मा जी के एक दिवस में वो जिए, ब्रह्मा जी की एक रात में जिए, और फिर 6 मनवंतर अगले दिवस में जिए, क्योंकि इतनी उनकी तपस्या थी। और सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा संभव है। और श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में वर्णन आता है, शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मार्कंडेय ऋषि इतने लंबे साल जिए। हम मार्कंडेय ऋषि के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है सूत गोस्वामी, कहा बताऊंगा। तो मार्कंडेय ऋषि बद्रिक आश्रम में बैठकर तपस्या करते थे और भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, बहुत कड़ी तपस्या करते थे। तो एक बार उनके सामने नर नारायण ऋषि उपस्थित हुए, भगवान के अवतार। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया उनका। प्रणाम करने के बाद में नर नारायण ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और पूछा कि हम क्या वरदान दे सकते हैं तुमको। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, आपने दर्शन दिया इतना ही मेरे लिए काफी है, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं, मुझे ये उत्सुकता है जानने के लिए कि आपकी माया शक्ति कितनी शक्तिशाली है, मैं आपके माया शक्ति का प्रभाव देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है देखोगे। हंसते हंसते भगवान चले गए, क्योंकि उनको मालूम था कि माया शक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि मार्कंडेय ऋषि भी इससे भ्रमित होने वाले हैं। तो भगवान के चले जाने के बाद में मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे ध्यान में, अचानक बिल्कुल घने बादल आने लगे, बहुत मूसलधार वर्षा होने लगी और पानी जो है समुन्द्र भरने लगे, नदियां भरने लगी, और बाढ़ आया और इतने तेजी से बाढ़ चढ़ता गया कि सारे पृथ्वी लोक सारा ब्रह्मांड पानी से भर गया। और मार्कंडेय ऋषि वो इस भीषण भयंकर सागर में बस ऊपर नीचे तैर रहे थे, और इतने ऊंचे ऊंचे लहरें आ रही थी, कभी मार्कंडेय ऋषि को ऊपर ले जा रहे थे तो कभी नीचे, कभी इधर तो कभी उधर। बहुत कष्ट हुआ मार्कंडेय ऋषि को, पानी पी रहे थे, उनको लग रहा था कि अभी अभी हमारे देहांत होने वाला है, लेकिन मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार से बताया जाता है कि एक सारा युग बीत गया, बहुत करोड़ों करोड़ों साल बीत गए, और मार्कंडेय ऋषि इस प्रलय के जल के ऊपर भ्रमण करते फिरते जा रहे थे। कोई खाना नहीं पीना नहीं, लेकिन भोजन के बिना भी वो मर नहीं रहे थे, उनको भी नहीं पता चल रहा था कि मृत्यु नहीं हो रही है। और फिर उस जल में भी भयंकर प्राणी भी थे, बड़े बड़े खतरनाक मछलियां थीं, लेकिन किसी न किसी तरह से मार्कंडेय ऋषि मर नहीं रहे थे। और ऐसे करोड़ों सालों तैरने के बाद में एक बार आगे कहीं उन्होंने देखा कि एक बादल जैसे कुछ नजर आ रहा है, जो कि हो सकता है कोई जमीन है वहां। तो तैरते हुए उस ओर गए और उधर देखा कि एक वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, और वहां वृक्ष के पास में एक बड़ा सा पत्र है और उस पत्र के ऊपर एक बालक है, बहुत सुंदर बालक है, जिसका जो वर्ण है वो बरसात के समय जो बादल होते हैं वही रंग का है, बहुत ही सुंदर, आंख कमल जैसे हैं। और ये दृश्य देखकर मार्कंडेय ऋषि बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि कहां प्रलय के सागर के बीच में अचानक एक बालक आ गया, और वो भी एक पत्र के ऊपर, और वो भी आसानी से अपने पैर की अंगूठी चूस रहा है और बीच बीच में अंगूठी मुंह से निकालकर बहुत मीठी तरह से हंस रहा है मार्कंडेय ऋषि की ओर। तो मार्कंडेय ऋषि देखते लगे, इतना सुंदर था वो बालक, और देखते देखते उसने सांस ली, वो बालक ने, और जैसे ही सांस लिया तो जैसे कभी कभी हमारे सांस से कभी मच्छर अंदर चले जाते हैं हमारे नाक के, उसी प्रकार से मार्कंडेय ऋषि भी उस बालक के मुंह के अंदर चले गए, उनके नसिकों से अंदर चले गए। और अंदर वो क्या देखते हैं, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड, और उन ब्रह्मांडों के बीच में ये ब्रह्मांड जिसमें प्रलय चल रहा है, और इस प्रलय में सब कुछ जल के वजह से सब ढका हुआ है, और इस प्रलय के जल में मार्कंडेय ऋषि तैर रहे हैं, और वहां वो बालक हैं और अपने आप को देख रहे हैं। ये सब देखते हुए मार्कंडेय ऋषि का सर बिल्कुल चकरा गया, और ठीक उस समय उस बालक ने सांस बाहर लिया और मार्कंडेय ऋषि फिर से जल में बाहर आ गए, और फिर से उन्होंने घूम कर देखा उस बालक की ओर, और इतने आकृष्ट हुए उस बालक की ओर, इतना एक प्रेम की भावना जागृत हुई मार्कंडेय ऋषि के हृदय में कि वो जल्दी से उस बालक को आलिंगन करने के लिए बढ़ते रहे तैर कर। और जैसे पास में गए आलिंगन करने ही वाले थे, ठीक उस समय बालक वहां से अदृश्य हो गया, और अचानक एक क्षण में मार्कंडेय ऋषि फिर से अपने आश्रम में आ गए। अपने आश्रम में पेड़ के नीचे जहां ध्यान करते हुए बैठे थे वहां पे बैठे हैं मार्कंडेय ऋषि। कोई प्रलय का जल नहीं, कोई बालक नहीं, कुछ नहीं। उस समय मार्कंडेय ऋषि सोचने लगे कि ये भगवान की माया शक्ति, और कभी हम ऐसे पूछेंगे नहीं, इतनी भयंकर माया शक्ति भगवान की, इतनी शक्तिशाली है। तो मार्कंडेय ऋषि इतने साल जिए, ब्रह्मा जी का पूरा एक दिवस, एक रात और फिर 6 मन्वंतर, अगला आधा दिवस, लेकिन फिर भी वो भगवान की माया शक्ति को भी समझ नहीं पाए। वो भी एक समय देख रहे थे कि ये कैसे बालक है, कौन है वो बालक, कौन थे, कृष्णा, उनको उग्र कृष्ण कहते हैं। उग्र कृष्ण क्यों कहते हैं, उग्र तो वैसे कभी कोई भयंकर भीषण रूप हो, भयानक रूप हो, उसको उग्र कहते हैं। ये तो बहुत प्यारा सा नन्ना सा रूप है भगवान का, तो उसको उग्र कृष्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दृश्य, भगवान का ये रूप ब्रह्मांड के प्रलय के समय दिखाई पड़ता है, इसलिए इस रूप को उग्र कृष्ण कहते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि इतने लंबे उम्र जीने के बाद भी भगवान की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थे, सोच रहे थे कि इतने लंबे जीवन जी रहा हूं, फिर भी भगवान की माया शक्ति के सामने हम एक चींटी या कीड़े के बराबर भी नहीं है। और एक कहानी है लोमश ऋषि की। लोमश ऋषि का नाम सुना है आपने, उनको एक वरदान मिला था कि जितने आपके शरीर पे लोम हैं उतने ब्रह्मा जी के दिवस आप जिएंगे। तो देखिए, गिनिए तो आपके शरीर में कितने लोम हैं, कितने हैं, गिन सकते हैं? तो इतने ब्रह्मा जी के दिवस जीने का वरदान लोमश ऋषि को मिला था, और लोमश ऋषि ने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, कोई मकान नहीं बनाया, वो केवल पेड़ के नीचे रहते थे। और इंद्र एक बार वहां से गुजर रहे थे, और इंद्र जैसे आप जानते हैं वो थोड़ा भोग करने के इच्छुक होते हैं, उनको पसंद है थोड़ा भोग करना नंदन कानन वन में। तो इंद्र जो है वो बहुत भोग करने के इच्छुक थे, और अच्छे अच्छे उनके मकान हैं, महल हैं। जब वो आकर देखा लोमश ऋषि को, उन्होंने पूछा कि लोमश ऋषि, आप अपने लिए घर भी क्यों नहीं बनाते, एक छोटी सी कुटिया तो कम से कम बनाइए। तो लोमश ऋषि ने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि ये जीवन कितना कम है, एक क्षण के बराबर है, एक क्षण में ये सारा जीवन बीत जाएगा, तो मैं समय क्यों बर्बाद करूं घर बनाने में, घर को पालन पोषण कर भल को मेंटेन करने में, उतना समय भगवान के भजन में मैं बिता सकता हूं। तो उस समय इंद्र ने सोचा कि मेरी जीवन की अवधि तो इतनी लंबी है, लेकिन लोमश ऋषि के जीवन की अवधि के बराबर में मेरे जीवन की अवधि एक क्षण के बराबर है, लेकिन मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं अच्छे अच्छे घर बंगले बनाने के लिए, और लोमश ऋषि जो इतना लंबे उम्र जीने वाला है वो बोल रहा है कि मैं समय क्यों वेस्ट करूं, ये जीवन जो है अशाश्वत है, समय को क्यों बर्बाद करना है। तो इंद्र बहुत शर्मिंदा हुए और सोचने लगे कि लोमश ऋषि की ऐसी भावना है तो हमें कितना ज्यादा भजन करना चाहिए, और इंद्र की तुलना से हमारा जीवन जो है वो एक क्षण के बराबर भी नहीं है। तो इंद्र की अगर ये भावना हुई थी तो हमारी भावना कैसे होनी चाहिए? एक क्षण में हमारा जीवन बीत जाएगा, कोई ये नहीं कह सकता कि मृत्यु कब आएगी, हम में से कोई गारंटी देकर कह सकता है कि हम घर में आज जीवित पहुंचेंगे? कोई गारंटी देकर कह सकते हैं कि हम आज जीवित पहुंचेंगे घर में? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि यही है संसार, कब मृत्यु आएगी कोई कह नहीं सकता, लेकिन आएगी निश्चित रूप से। और यहां पर जीवन की अवधि कम होने के नाते हमें ज्यादा से ज्यादा इस कम समय का फायदा उठाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में प्रार्थना हम पढ़ते हैं कि हालांकि भारतवर्ष के निवासी इनकी जीवन की अवधि बहुत कम होती है, फिर भी देवता के लोक देवलोक के भी निवासी हैं वो यहां आना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर जो भक्ति हो सकती है वो देवलोक में भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहां पर इतने सारे भोग के साधन हैं कि भक्ति नहीं की जा सकती, भोग में ही लग जाते हैं सारे देवी देवता। लेकिन यहां भारतवर्ष में अनुकूल परिस्थिति है, नरक में जाएंगे तो बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है, और स्वर्ग लोक देवलोक में जाएंगे इतना भोग है कि वहां भगवान को भूल जाएंगे। तो नरक लोक में कष्ट की वजह से भगवान को भूल जाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, और स्वर्ग में जाएंगे तो इतना भोग है कि वहां भी हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। केवल ये बीच वाला जो जगह है जिसको क्या कहते हैं, भूलोक कहते हैं, और भूलोक में भी ये भारतवर्ष बहुत विशेष कहलाया जाता है। इस भारतवर्ष में भक्ति करने के जो साधन है वो और कहीं नहीं मिलेंगे। यहां का साधारण गरीब आदमी भी कृष्ण को जानता है, राम को जानता है, लेकिन ऐसे कितने सारे देश हैं जिसमें लोगों ने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना है, जो भगवान की भक्ति से इतने दूर हैं। तो यहां पर हम कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया है कि भारतवर्ष में मनुष्य जीवन प्राप्त करना भले वो कम उम्र का हो, ये ज्यादा मूल्यवान है इसकी तुलना में कि हम देवलोक में भी देवी देवता बन जाएं। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि हमारा जन्म ये भारतवर्ष में हुआ है, और भारतवर्ष में जन्म लेकर हमें सत्संग का लाभ मिला है। तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः।
भगवान के भक्तों का संग का एक क्षण भी अगर मिले, लव लव मात्र भगवान के भक्तों का संग अगर हो जाए, तो इसकी तुलना हम स्वर्ग के प्राप्ति से नहीं कर सकते, मुक्ति से भी नहीं कर सकते। तो ये भौतिक ब्रह्मांड में, ये पृथ्वी लोक में रहकर अन्य वरदानों को प्राप्त करने की बात तो दूर है। तो हमारा सौभाग्य ये है, सबसे पहली बात, हमें मनुष्य शरीर मिला है। दूसरी बात, मनुष्य शरीर भारतवर्ष में मिला है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके, भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करके सत्संग का लाभ मिला है, जो आप सबको मिला है। अगर इसका लाभ हम नहीं लेंगे, इसका मतलब है कि हम सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इतने अच्छे मौके को गंवाना हमारे जीवन को व्यर्थ कर देना है। इसलिए सभी को इस भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग को बहुत गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। यही एक मौका है, इसी जीवन में हमें जीवन को सफल बनाना है और मृत्यु के बाद में प्राण त्याग कर हमें भगवान के धाम में जाना है, वापस यहां लौट कर नहीं आना है फिर से। और यही हमारे जीवन की सफलता है। तो केवल लंबे उम्र जीने के लिए हमें इच्छा नहीं रखनी चाहिए, हमें केवल भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की इच्छा हृदय में रखनी चाहिए और इसको पूरे करने के लिए कार्य करने चाहिए, तीव्र प्रयास करना चाहिए, सत्संग में बार बार आना चाहिए जितना हो सके उतना, हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए, कृष्ण कथा का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। प्रभुपाद ने इतने सुंदर ग्रंथ लिखे हैं, इनका रोज अध्ययन करना चाहिए, भगवान की अलग अलग प्रकार की सेवा में लग जाना चाहिए। इस प्रकार से हमारे चित्त के शुद्धिकरण से भगवान के प्रति आकर्षण की भावना हृदय में जागृत होगी और फिर भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आशा करते हैं कि लंबे जीवन की अपेक्षा न करते हुए केवल एक शुद्ध भक्त की जीवन की अपेक्षा हम करें और यही प्रार्थना भगवान से करें, वैष्णवों से करें, और इसी से हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न है? पुत्री दोनों मिलकर गए थे क्या? खुद में राजा और रेवती दोनों मिलकर गए थे। अगर रेवती वहां नहीं गई होती तो वो तो मर चुकी होती तब तक। वो साथ में गई ब्रह्मलोक में, इसलिए तो फिर वो जी पाए द्वापर युग तक और बलराम को मिले। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण। समजा प्रभू जी, आज तुम्ही सांगितलं की म्हणजे प्रत्येक प्राण्याला म्हणजे असं ठराविक श्वास दिलेले असतात, आणि एखादा असं व्यायाम करणारा जर प्राणी असेल, म्हणजे मनुष्य वगैरे असेल, त्यांना जर व्यायाम केला तर त्याचे श्वास जर म्हणजे व्यायाम करताना जास्त होतात, आणि तसं झालं तर म्हणजे त्याचा मृत्यू लवकर होतोय का त्याचे श्वास कमी?
बरोबर आहे, सही है। जो लोग ज्यादा कसरत वगैरह करते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है साल के हिसाब से देखा जाए, लेकिन भगवान के कीर्तन में नृत्य करना, इसमें जो सांस कम होता है ज्यादा होता है उसमें कोई खराबी नहीं, कि उसे हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है। लेकिन केवल मिस्टर बेलगाम, मिस्टर कर्नाटक, मिस्टर इंडिया, मिस्टर यूनिवर्स अगर बनना है या ओलंपिक में गोल्ड मेडल हमें मिलना है, उसके लिए हम कसरत करते हैं या अन्य प्रकार के इंद्र तृप्ति के कार्य करते हैं, तो फिर उनमें से हम मृत्यु के थोड़े करीब पहुंचते हैं।
पूरे जगामध्ये, भारतामध्ये सगळ्या लोकांना श्रीकृष्णाचं नाव माहित आहे, बाहेरच्या देशामध्ये कसं काय माहित नाही?
कसं काय माहित नाही
म्हणजे आता तुम्ही सांगितल्यावर म्हणलं,
आता माहित आहे ना। प्रभुपादचे ग्रंथ, त्यांचं वितरण चालू आहे पूर्ण जगामध्ये। प्रभुपाद की कृपा से अभी कृष्ण का नाम हर एक देश में गूंज रहा है। भले हर एक देश की प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के नाम को न सुनता हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देशों में आजकल बहुत सारे लोग सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम। हर एक देश में हमारे इस्कॉन के मंदिर हैं जहाँ भक्त लोग हरिनाम संकीर्तन करते हुए सड़क में जाते हैं, कृष्ण प्रसाद वितरण करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं। तो धीरे 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 से कृष्ण को सब जानने लगे हैं। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आज थे आछे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नाम। पृथ्वी में जितने सारे नगर ग्राम इत्यादि हैं इन सब में मेरे नाम का प्रचार हो रहा होगा। और ये भविष्यवाणी प्रभुपाद जी ने पूरी कर दी है। ठीक है। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे।